जय माँ। हम लोग सावित्री में बुक टू कैंटो टू और पेज नंबर 112 पर हैं, 112। और इसमें श्री अरविंद हमको सूक्ष्म तत्व से बने हुए जगत का वर्णन है, उसका प्रारंभ कर रहे हैं। सटल मैटर वास्तव में ठीक हमारे भौतिक जगत के पीछे और उसके ऊपर और भी जितने भी लोक हैं वो सूक्ष्म तत्व से बने हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ओरिजिनल मैटर भी अपने ओरिजिन में डिवाइन है, क्योंकि अगर केवल भगवान है डिवाइन, अब भगवान के मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, तो फिर मैटर कहाँ से आया? तो आमतौर पर जब हम कहते हैं ना कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो भगवान कुम्हार हैं और घड़ा, तो ये प्रश्न उठता है कि फिर घड़े का जो, वो कुम्हार तो घड़ा बना रहा है लेकिन घड़े का जो मट्टी है वो कहाँ से आई? तो फिर तो द्वैतवाद हो गया कि एक और भगवान है, एक और घड़ा मट्टी इत्यादि इत्यादि है और भगवान बना रहे हैं। लेकिन जो ओरिजिनल वेदांत है उसमें अंत में मैटर की भी डिवाइन ओरिजिन है, भगवान ही अपने अंदर से सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ऊर्जा को, जिसको ईथर, एक समय विज्ञान में हम इसको ईथर के रूप में कहते थे, वो प्रकट करते हैं और उसमें नाद और इत्यादि, वो पूरी जड़ तत्व की उत्पत्ति जगह जगह पर आएगा। सावित्री में सब कुछ है, परंतु इतना कि भाई जो सूक्ष्म जगत है और सूक्ष्म तत्व जो है जिससे सूक्ष्म जगत बने हैं, सूक्ष्म जगत कौन से हैं? जो इंद्रियों से नहीं हम अनुभव करते हैं लेकिन कभी कभी उनका अनुभव हमारे पास आता है, स्पर्श होता है। और इसका जो क्लासिक एग्जाम्पल अगर आप विज्ञान के उसमें जाएंगे तो है फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन क्या है? तीन डायमेंशन है, जो ऊंचाई है, ये इसमें आएगा भी ये शब्द, इसीलिए इसकी अभी हम बात कर लें। ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, ये तीन डायमेंशन है, हाइट विद और लेंथ, तो ये तीन डायमेंशन है। लेकिन अब जो चौथा डायमेंशन अगर विज्ञान में जाएंगे तो वो है काल। अब कहेंगे ठीक है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अब एक कल्पना कीजिए कि अभी जो घटित हो रहा है, क्या ये संभव है कि अगर हम काल की ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं जहां भविष्य में जो घटित होने वाला है वो जान जाएं? इसकी कल्पना विज्ञान में भी हो रही है और लोग टाइम मशीन इत्यादि की बात कर रहे हैं। तो फिर यह चीज जो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसका हमारा कंसेप्शन बदल जाएगा। तो ये तो एक ह्यूमन लेवल की बात है, लेकिन वास्तव में जो वैज्ञानिक, जो आध्यात्मिक विज्ञान है, वो हमको बताता है कि एक स्पेस टाइम कंटिन्यूम नहीं है, कई स्पेस टाइम कंटिन्यूम है। और इसका सीधा सा एक छोटा सा उदाहरण है कि जब हम स्वप्न देखते हैं, कुछ एक स्वप्न एक्चुअली सत्य भी निकलते हैं, तो हम वो केवल स्वप्न नहीं होते हैं। एक तो मैं बहुत ही दुख भरा स्वप्न जानता हूँ, बहुत सारे जानता हूँ, एक जिसमें एक माँ ने देखा कि उसके चार बच्चे थे, चारों बच्चे ग्रोन अप, वो एक नदी के ऊपर जैसे ऐसे पड़े हुए हैं। तो उसको समझ नहीं आया, थोड़ा अजीब सा लगा, अटपटा सा लगा, और ठीक दो दिन बाद चारों की एक नदी में डूबकर मृत्यु हुई। अब आप देखिए, यानी स्पेस टाइम में ये घटनाएं, एक अलग स्पेस टाइम में वो घटना हो चुकी थी, निर्धारित हो चुकी थी, लेकिन यहां पर वो प्रेसिपिटेट करती है। तो ये अपने आप में एक बहुत अनूठा विज्ञान है, इसलिए हमको ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम केवल एक पिंजड़े में रहते हैं जिसको हम कहते हैं कि थ्री डायमेंशनल पिंजड़ा, उसमें काल की गति जो इस समय हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, कई लेवल के स्पेस टाइम कंटिन्यूम है। इसकी बहुत सारी कहानियां भी हैं। एक तो बड़ी फेमस है, जब एक राजा पूछता है एक योगी को और योगी उससे पूरी बात करता है, तो वो 70 वर्षों का उसका पूरा जीवन उसको लगता है गुजर गया, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है केवल 2.5 मिनट हुए थे। अब ये आपको स्वप्न में भी ऐसा होता है ना कि लगता है बहुत लंबा एक अवधि गुजर गई। अब नॉर्मली लोग कहते हैं ये तो स्वप्न है, लेकिन ऐसे भी स्वप्न हैं जो भविष्य सूचक होते हैं, और ऐसे भी स्वप्न हैं जो आपके जीवन में घटित हो रही घटनाओं के पीछे का एक दृश्य दिखा देते हैं। यानी दिस इज ए मल्टी लेयर्ड रियालिटी, अगर पूरी विज्ञान की भाषा में। तो भौतिक जैसे स्थूल शरीर है, स्थूल देह है, स्थूल जगत है, वैसे ही सूक्ष्म जगत है। और फोर्थ डायमेंशन जिस सेंस में स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है, हालांकि विज्ञान में आप देखें तो इस पर बहुत लोगों ने प्रयास किया है समझने का, और एक समझने का ऐसे प्रयास किया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और माथे को चकरा देता है, कि आप अगर उसको बाहर से देखते हैं तो वो एक प्रकार से लगता है, अंदर से देखते हैं तो मानो आप अंदर से बाहर की ओर सारी चीज़ें देख रहे हैं। और उस डायमेंशन में जो जैसे अभी भौतिक स्थान पे उसमें मैं हूँ, ये है, वो सब अलग है। फोर्थ डायमेंशन में क्या होता है, बिल्कुल जैसे एक अगर मान लो एक स्वान या कोई व्यक्ति एक घर में चला जाए जिसमें सब जगह शीशे लगे हुए हैं, तो क्या देख रहा है वो, एक को देख रहा है या अनेकों को देख रहा है? वो एक के साथ साथ अनेकों को देख रहा है। अफकोर्स ये तो एक प्रकार का एक प्रतिबिंब है, लेकिन कुछ इस प्रकार की चीज है कि फोर्थ डायमेंशन है, वहां चीजों का वस्तुतः यथार्थ प्रकट होने लगता है, टाइम स्पेस के सारे कंटिन्यूम समझ में आते हैं। हालांकि स्ट्रिंग थ्योरी तो 11 डायमेंशन की बात करती है, तो लेकिन वो फिर भी कॉस्मिक लेवल की बात कर रही है। लेकिन यहाँ फोर्थ डायमेंशन वो जो इस भौतिक जगत के जो हाइट लेंथ ब्रेथ और साथ में काल की गति इससे परे है, और वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है इन सब के माध्यम से। एक और उदाहरण ले लें जिसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आप एक पूछेंगे महाभारत कहाँ है, तो लोग कहीं किताब है, अब वो देखिए कई किताबें उसकी प्रतियाँ छपी हैं, तो कहेंगे कि ये किताब भविष्य पास्ट में कहाँ थी, तो आप ये कहेंगे ना कि सबसे पहले ये इस समय लिखी गई थी। अगर आप पूछेंगे कि लिखने के पहले कहाँ थी, उत्तर क्या होगा, व्यास के हृदय में थी, लेकिन अमूर्त रूप में है। हर एक राइटर जानता है कि अंदर में कोई चीज होती है जो एक एक्सप्रेस करना चाह रही है। अगर आप पूछेंगे अमूर्त रूप में होने के पहले क्या थी, तो कहा जाएगा हाँ थी, वो संभावनाओं के रूप में ईश्वर के अंदर थी, ट्रांसजेंडेंट के अंदर। और फिर कहेंगे कि भविष्य में ये जो महाभारत अब प्रकट हुई है, भविष्य भी है इसका, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है क्योंकि ये तो महाभारत तो अब लिख दी गई है। अब देखिए भविष्य में इस रचना से कितने सारे अलग अलग भाव प्रकट होंगे। ऐसे भी लोग हैं अभी भी हैं जो कहते हैं रावण तो बड़ा अच्छा आदमी था, पिक्चर बनाई उन्होंने उस पर। तो अब उसी रामायण और महाभारत का एक पास्ट है, एक भविष्य है और एक उसका वर्तमान है। तो उसी प्रकार से कोई भी घटना होती है वो कई लेवल्स पर एग्जिस्ट करती है, और उसको हम देख नहीं पाते, हम केवल इस समय की चीज को देख रहे हैं। तो उस दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सब श्री अरविंद हम लोगों को धीरे धीरे रिवील कर रहे हैं। बच्चे ना हम लोग तो एक एक करके, तो अभी सूक्ष्म जगत की बस उसके बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सबका दर्शन कराएंगे। हम लोग पेज 112 पर रुके थे, ऊपर से चौथी लाइन हमको प्रारंभ करनी है। ए नेचर लिफ्टेड बाय ए लार्जर ब्रेथ प्लास्टिक एंड पैसिव टू द ऑल शेपिंग फायर। अब नेचर, ये जो जड़ प्रकृति, नेचर फॉलन नेचर है, लिफ्टेड हो रहा है तो फॉलन नेचर है, जड़ प्रकृति में सीमित कुछ ऐसे लोग हैं। आप जड़ प्रकृति में देखिए रेंज होती है, ऐसे लोग हैं जिनको अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सुनाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या टूटू लगा रहे हो, ये हो उनकी भाई जो जड़ प्रकृति के अंदर संभावना है। और जड़ प्रकृति के अंदर ही ऐसी संभावना है कि अगर आप उसको रॉक म्यूजिक सुनाओगे या कहेगा अरे ये कानों को दर्द करने वाला कहां से आ गया, जड़ प्रकृति के अंदर ही है। तो देखिए रेंजेस हैं। तो यहां पर एक ऐसा नेचर जो प्रकृति जो ऊपर की ओर उठ रही है, ऊपर की ओर उठने का मतलब वो सूक्ष्म तत्वों को कैच कर रही है। जो बहुत स्थूल जगत में रहता है उसको आप वो पूछेगा कि कहां है भगवान, तो वो तो कहेगा मेरी आंखों से दिखता नहीं। अब उसको आप बोलेंगे कि तुम आंख वाले अंधे हो तो उसको बुरा लगेगा। और अगर वही दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे जिसने भगवान को नहीं देखा है लेकिन उसके अंदर ये सर्टिट्यूड आ गया है, आप पूछेंगे कि भगवान है, वो कहेगा सर्वत्र है। देखिए भौतिक स्तर पर भी संभावना है, क्योंकि एक वो ब्रेथ, ब्रेथ क्या है, प्राण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा उसको ऊपर उठाती है। और जैसे जैसे हमारा प्राण, इसीलिए पूरा योग है कि प्राण को आपको नष्ट नहीं करना चाहिए। पूरी जो टेंडेंसी ब्रह्मचर्य की क्या है कि आप प्राण को अगर निम्न प्रकृति में, निम्न चीजों में उलझाओगे तो इसमें वो फोर्स नहीं रहेगी जो आपकी चेतना को आरोहण कर सके। और इसके बहुत सारे तरीके थे, अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन यही प्राण लिफ्टेड बाय अ लार्जर ब्रेथ। तो जब आप अपने सीमित जीवन में, सीमित गतियों में जो दिमाग घूमता रहता है, ये क्या खाना खाया, वो कैसा है, ये कैसा है, इससे तो अब प्रगति नहीं होगी। जब आप इसको, इसके कई तरीके हैं, जब आप इसको एक वास्टर कॉन्शियसनेस, लार्जर कॉन्शियसनेस में उठते हैं तो वहां एक प्रकृति प्रकट होती है अलग प्रकार की। प्लास्टिक एंड पैसिव टू द ऑल शेपिंग फायर। यहां जड़ है,
ठोस है, घना है। आपके बोलने से कि चीजें बचपन में खेल खेलते हैं चिड़िया उड़ तो चिड़िया नहीं उड़ती है आपके बोलने से, लेकिन अगर आप इस सूक्ष्म प्रकृति और उसकी शक्तियों में जीने लगोगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका संकल्प काफी होगा। शेरविंद के एक्सपेरिमेंट है इस पर भी, तो आप संकल्प आपका होगा कि ये चीज ऐसे हो और वो होने लगेगी, लेकिन वो समय लगता है क्योंकि जड़ तत्व उस चीज को आसानी से नहीं ग्रहण करता है। तो यहां ये सारी बातें इसमें प्लास्टिक, लेकिन ऊपर की जगत में ये प्लास्टिक है, जैसे ही आदेश मिलता है ईश्वर का ऑटोमेटिक वहां जो शक्तियां हैं देवता हैं वो कार्य करते हैं। एंसर्स द फ्लेमिंग गॉडहेड्स कैजुअल टच, आंखों ही आंखों का इशारा काफी होता है। माता जी चंपकलाल जी का था ना, वो माँ कहती नहीं थी ज्यादा, ये समझ जाते थे कि माँ क्या चाहती है। और यहाँ लोग हैं जो वाद विवाद तर्क वितर्क, क्योंकि यू आर नॉट रेडी, वो जड़ प्रकृति है ना, जड़ बुद्धि, तो वो नहीं समझ पाती है। तो उसका वर्णन है, इम्यून फ्रॉम आवर इनर्शिया ऑफ रेस्पॉन्स इट हियर्स द वर्ड टू विच अवर हार्ट्स आर डेफ। तो पहले तो हमको इस ठोस जड़ प्रकृति से बाहर निकलना है, नहीं तो हम नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं। मतलब हमारी तो सिचुएशन ये होनी चाहिए, जो पहले भी इसकी बात हो रही थी, शायद हुई है कि माँ ने किसी को बुलाया, वो यहाँ पांडिचेरी रेलवे स्टेशन में ट्रेन के अंदर है, नवजात जी की बात है, जब को कहा माँ ने कि गो टेल हिम टू कम, तो वो जैस क्योंकि वो रुकी रहती थी गाड़ी 4-5 घंटे, वो पुराने समय, फिर वो इंजन से डब्बा कुछ करता था लगता था, तो वो जब गया तो नवजात जी रेडी होकर के अब बाहर आ रहे हैं, रात का समय था, ही हैड गॉन ऑफ टू स्लीप एंड ही टोल्ड हिम उसके कहने के पहले कि हाँ मैं आ रहा हूँ। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। चंपकलाल जी के साथ तो ये कॉमन ऑकरेंस था, हम सब ने इसको विटनेस किया है। तो वो एक अलग प्रकार की प्रकृति जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स करती है। यहाँ पर हम उस चीज़ को समझने में एक बहुत समय लगाते हैं, क्योंकि इसीलिए कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इस केवल जड़ बुद्धि से बाहर निकलने के लिए प्रैक्टिसेस हैं। नहीं तो जैसे भोजन खूब एंजॉय करना, भोजन में लिप्त रहना, तो भोजन क्या है, आपके जड़ प्रकृति से जुटा हुआ है। कई प्राणायाम की भी प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप ध्यान, जिनका ध्यान करोगे आपकी प्रकृति अपने आप से उठने लगेगी। तो ये श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर इनर्शिया नहीं है रिस्पॉन्स का, और हम भगवान की वाणी को सुन पाते हैं और उस रिस्पॉन्स कर पाते हैं। एडॉप्ट्स द सीइंग ऑफ इमॉर्टल आइज एंड ट्रैवलर ऑन द रोड्स ऑफ लाइन एंड यू परस्यूज द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी टू इट्स होम। आप देखिए, आपको भगवान क्या बनाना चाह रहे हैं, गोलकुंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, बात हो रही थी ऑरोविल, अब उनके हृदय में क्या है, एक स्वप्न है, माने कहा इट इज ए ड्रीम ऑफ द डिवाइन, उन्होंने उसको फिर उसका मैप बनाया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ऑरोविल का, एक्चुअली इट्स ए इवोल्यूशनरी मैप, अगर आप देखेंगे तो ऐसे स्पाइरल है, तो वो स्पाइरल इवोल्यूशन का प्रतीक होता है कि वो आपको ओपन एंड की तरफ ले जा रहा है, और उसका एक केंद्र है, केंद्र से जुड़े रहना है। हमारे शंखों में भी यही होता है, तो जो स्पाइरल मूवमेंट है उसका, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और गैलेक्सीज का भी यही मूवमेंट होता है, आप देखेंगे अगर ध्यान से, हाँ बिल्कुल, वो गैलेक्सीज, वो ऐसे नहीं कि एकदम गोलाकार बिल्कुल फिक्स्ड उसमें नहीं है, अर्थ भी जब घूमती है तो एलिप्टिकल सर्किल में घूमती है। तो इसके पीछे जो सत्य होता है वो वहाँ पर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। दस वी ड्रॉ नियर टू द ऑल वंडरफुल, तो अगर भगवान के घर जाना है तो थोड़ा तो सूक्ष्म प्रकृति कम से कम डेवलप करनी पड़ेगी, बिल्कुल स्थूल बुद्धि से हम नहीं जा सकते। अगर हम सोचेंगे कि ऐसे ये आंख से हम ये देख रहे हैं, हम ये कान से जितना सुन सकते हैं, तो फिर माँ कहती है इसको, यू आर प्रिजनर्स ऑफ द सेंस। तो प्रिजनर ऑफ सेंस है वो, तो फिर आगे क्या ढूंढेगा। Thus we draw near to the all wonderful, following his rapture in things as sign and guide. क्या अद्भुत लाइन है, दूसरी भी पढ़ देता हूं। Beauty is his footprint showing us where he has passed. Love is his heartbeats, rhythm in mortal breasts. Happiness the smile on his adorable face. भगवान के घर जाना है, आपने पूछा है भाई पता कैसे चलेगा, कहते हैं तुम सही रास्ता इससे होगा कि तुम्हारे अंदर में जॉय इंक्रीज हो रहा है। किसी ने एक बार ये प्रश्न किया था, रिटायर्ड जज थे और यहाँ से इंद्र सेन जी गए थे, पुणे की बात है। उन्होंने कहा साधना के लिए तो बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है। कहते हैं हाँ, लेकिन जितना सीरियस होगे उतना आनंद बढ़ेगा। अब उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी और ये सच है। अगर हमारे अंदर आनंद की अनुभूति, शांति की अनुभूति बढ़ रही है, मतलब हम सही ट्रैक पर हैं। और हमारे अंदर अगर इसके विपरीत दुख, अशांति, कलह, क्लेश, मतलब हम दूर जा रहे हैं। सफरिंग इसका लक्षण है, डिप्रेशन इसका लक्षण है कि हम दूर जा रहे हैं अपने ही ओरिजिन से, भगवान से। तो इसलिए हमको साइन बोर्ड बता रहे हैं श्री अरविंद, कैसे हम ड्रॉ करते हैं, कैसे हमको पता चलेगा। अगर आपको अपने अंदर जीवन में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में एक रैप्चर का अनुभव हो रहा है, मतलब यू आर ऑन ट्रैक, कहीं लिखा नहीं होगा भगवान का घर आ रहा है, बट ये आपके अंदर अवस्था होगी। ब्यूटी इज हिज फुटप्रिंट शोइंग अस वेयर ही हैज पास्ट। तो हम कहेंगे अच्छा, ब्यूटी और अगलीनेस, हम सीधा हमारा दिमाग कहाँ चलता है, बाहर। जिस दिन हम अगलीनेस के अंदर ब्यूटी देख लेंगे, जिस दिन हम सांप के अंदर भी ये देखें कि ये भी तो भगवान शिव का एक अंश है, व्हेन वी कैन सी ब्यूटी इन द अगलीएस्ट, और वो तो हमारी इंद्रियों की एक फॉर्मेशन है, आवश्यक है वो एक नॉर्मल लेवल के लिए, लेकिन जो ब्यूटी की जहाँ बात हो रही है, भगवान की छाप। और जैसे जैसे हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, इसका लक्षण ये होता है कि वो व्यक्ति जो बाकी सबके नहीं लगता ये बड़ा खराब है, बड़ा, भगवान उसमें सुंदरता ढूंढी लेते हैं। ये कहानी ना हमारे यहाँ कुब्जा की कहानी क्या है, उसको मिरेकल की बात नहीं है भाई, वो टेढ़ी मेढ़ी अंग भंग, लोग कहते हैं अरे ये तुम मत आना, तो तेरे आने से तो अपशकुन होगा, तो बेचारी छिपी रहती है। कृष्ण जी जाके वहीं नजर आती है, ये कौन है बाहर आती है तो कहती है अरे सुंदरी, तो वो कहती है मुझे सुंदरी कह रहे, तो आँच छीन पकड़ करके उठाते हैं तो सुंदरी में परिवर्तित। इसे वे ऑफ सेइंग, ये नहीं कि ऐसे हो रहा है, पर जो सौंदर्य को देख पाता है, हर किसी के अंदर, हर चीज के अंदर सौंदर्य है, और अगर आप देख पा रहे हैं मतलब आप भगवान के करीब जा रहे हैं। और इसके विपरीत भी होता है, कुछ लोग बार बार आके अरे वो खराब है, ये खराब है, यहाँ होस्टाइल फोर्सेज है सब जगह। कभी कभी मुझसे आके पूछते हैं कि भाई ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, ये आश्रम, वो, मैं कहता हूँ भैया तुम भगवान देखने आए थे या होस्टाइल फोर्स देखने आए थे, तो लग रहा है कि तुम तो उल्टी दिशा में जा रहे हो, लौटो। अगर तुमको सब में होस्टाइल फोर्सेस दिखाई दे रही हैं, यू आर ऑन ए डेंजरस ब्रिंक, तुम होस्टाइल फोर्सेस से डायरेक्ट हो रहे हो। जिस दिन तुमको सबके अंदर भगवान दिखाई देंगे, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यही तो सब शास्त्रों में यही लिखा है। शेरविंद इसको एलिमेंट्री एक्सरसाइज कहते हैं, योगा इन इट्स ऑब्जेक्ट्स में कहते हैं पहला प्रयास ये करना है, यू हैव टू सी गॉड इन एवरी वन एंड एवरी थिंग। और देखिए जीवन कितना सरल हो जाएगा। आपकी वाइफ है या हस्बैंड है आपसे गुस्सा करें, तो आप कहिए भगवान का ही कोई रूप है देखिए लड़ाई झगड़ा सब बंद हो जाएगा। और होते ही अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपके अंदर ये भाव अगर चला गया, क्योंकि अदरवाइज क्रोध, घृणा, ये सब डेवलप होते हैं, जिस दिन आप देखोगे ये सब भगवान के ही रूप है, तो आपके अंदर द्वेष नहीं होगा किसी से, आपका मन तो शांति में होगा। और चूंकि आपके मन शांत होगा, धीरे धीरे बाकियों का मन भी शांत होगा। तो ब्यूटी, लव इज हिज हार्ट बीट्स रिदम इन मॉर्टल ब्रेस्ट। भगवान का हृदय धड़कता है, कैसे धड़कता है, प्रेम से धड़कता है। अगर आपके अंदर प्रेम, यहाँ प्रेम ऑफ कोर्स लाइक डिसलाइक की बात नहीं, पर प्रेम का विस्तार हो रहा है, इस हद तक प्रेम जा सकता है कि जमीन पर पड़े हुए तृण के प्रति भी आपको प्रेम आएगा, मिट्टी के ढेले पर भी आपको एक प्रेम की अनुभूति होगी, कीड़े पर भी प्रेम आएगा, उसी से फिर दया का जन्म होता है। आप ये नहीं इसके कर्म होंगे, देखो ऐसे सफर कर रहा है, ये भाव नहीं आएगा। आप देखोगे उसके अंदर भी प्रेम और उसको ऊपर उठे, और ये प्रेम है, ये इसका लक्षण है कि हमारे अंदर भगवान बढ़ रहे हैं। जो छोटे कृष्णा हैं वो अब मैच्योरिटी पर आ रहे हैं। हैप्पीनेस द स्माइल ऑन हिज एडोरेबल फेस। कई बार मैं ये चीज कहता हूँ, आश्रम में लोग कहते हैं अच्छा यहाँ डाइनिंग रूम, खाना तो फ्री मिलता है, घर भी मिल जाता है, कमरा, में कहता हूँ ये सब तो बाद की बात है, यहाँ खुशी फ्री मिलती है। तो क्या मतलब है? कहा देखो बाहर लोगों के चेहरे देखो यहाँ आते ही सीधा माँ दे देती है। अब हम लोग लूज कर देते हैं, वो हमारी समस्या, हम पुराने रास्ते पे, पुराने तरीके पे चले जाते हैं। इट इज गिवन टू यू, बाकी चीजें बाद में मिलती हैं, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी ये सब, पहले आपको जॉय दिया जाता है। कौन सा जॉय? वो जो कॉजलेस है। तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई हमको तो कारण चाहिए, तो हम पुराने संसार में वापस लौटते हैं कि ये वाली चीज हमारे पास होगी, वो व्यक्ति हमारे पास होगा तो जॉय होगा। लेकिन यहाँ पे वो स्पॉन्टेनियस हैप्पीनेस जो हमारा एक स्वभाव है वो मिलना चाहिए। ए कम्युनियन ऑफ स्पिरिचुअल एंटिटीज, ए जीनियस ऑफ क्रिएटिव इमिनेंस। अब क्या क्या अनुभव होता है वहां पे? कम्युनियन ऑफ स्पिरिचुअल एंटिटीज, वे देवी देवता जो आप केवल मंदिर में लोगों ने रखे हैं, वो आपको उनसे संपर्क स्थापित हो जाता है। ए जीनियस ऑफ क्रिएटिव इमिनेंस। अब यहां ये देखो शेरविंद शब्द इमिनेंस तो हम समझते हैं वो जो हमारे अंदर है, लेकिन वो क्रिएटिव है और उसकी क्रिएटिविटी की बात ही क्या है? वो कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ से पकड़ के क्या घटनाक्रम लेके आपको ले आएगा अपने पास? आप बोलें ये क्रिएटिविटी केवल भगवान की हो सकती है। क्रिएटिव इमिनेंस, वो केवल एक साक्षी नहीं है, दृष्टा नहीं है, वो ईश्वर है। वो आप कर रहा है अपना काम क्रिएटिव, और ऐसा और क्रिएटिव वर्ड यूज किया है, वो ऐसी घटनाएं यूज करेगा कि कभी कभी जो आपको लग रही है कि ये तो बुरी चीज हुई हमारे जीवन में, उस डोर से भगवान आपको अपने करीब खींच रहे हैं। कितने लोगों का ये अनुभव हुआ है? कह रही जिसको हम शेरविन का एक बहुत पहले का लेटर है, कलकत्ता की बात है, वो जब उनकी वाइफ उनका ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई है, तो शेरविन के लेटर है, उस लंबा लेटर है, उसमें सांत्वना दे रहे हैं। फिर कहते हैं पर तुम्हें तो मालूम है प्रिय कि कई बार बुरी घटनाओं से, दुख के द्वार से भगवान अपनी ओर ले जाते हैं, गुड की ओर ले जाते हैं। देखिए श्री अरविंद को तो जेल के रास्ते ले आए। तो दिस इज दैट ट्रूथ, दैट क्रिएटिव इमिनेंस। अब बोला भी उन्होंने यही कि मैं तुमको जेल लाया हूं, मेरा प्रयोजन है। आप सोचिए कोई बाहर का सीन है कि भाई अंग्रेज उनको जेल ले गया, अंदर का सत्य क्या था? श्री कृष्ण उनको यही रिवील करते हैं, आई हैव ब्रॉट यू हियर, मेक्स ऑल क्रिएशन डीपली इंटीमेट। फिर आपको क्या नहीं अपना लगेगा, क्योंकि जब भगवान अपने हो जाते हैं तो सब अपने हो जाते हैं, क्योंकि वही तो सब जगह हैं। ए फोर्थ डायमेंशन ऑफ एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य की अनुभूति। सौंदर्य की अनुभूति का जो पता कैसे चलता है? सौंदर्य एक बड़ी अद्भुत है, एक्चुअली वो इम्पर्सनल है, आप उसको बांधने की चेष्टा करते हैं नाम रूप में, ये हमारी सीमा है। सौंदर्य की अनुभूति के साथ एक जॉय आता है, सौंदर्य की अनुभूति के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो फोर्थ डायमेंशन ऑफ एस्थेटिक सेंस की बात कर रहे हैं, जहां आपको पीड़ा में भी एक जॉय की अनुभूति हो जाएगी। किसी कवि ने लिखा है, अपने ढंग से इसको महसूस भी किया है लोगों ने, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। वो मधुशाला, ये दारू की बात नहीं हो रही है, आप उसके अंदर भी देखते हो कि अरे भगवान मुझे इस रास्ते से ले आ रहे हैं, कैसा हद भागा हूं मैं, प्यार से खोज रहे थे मैं नहीं आया, हार्ट अटैक कराना पड़ा, किसी को मेरे जीवन से हटाना पड़ा। तब आप देखेंगे वो फोर्थ डायमेंशन ऑफ एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य की अनुभूति। Where all is in ourselves in all. बुल्ला के जाना में कौन, ये है ना, तब आप हर किसी के अंदर उसी एक स्व को देखते हो। यहां ये नहीं है कि अलोक पांडे इज सिंह अलोक पांडे इन एवरी वन, ये ईगो का वो असुर ट्राई करता है, बट यू सी द ट्रू सेल्फ, द वन सेल्फ, द डिवाइन इन एवरी वन। आप किससे झगड़ा करोगे? युद्ध लड़ सकते हो अगर भगवान के आदेश पर झगड़ा, विषाक्त होना, घृणा, ये तो आप असंभव हो जाएगा। तो ये फोर्थ डायमेंशन क्या है? वेयर ऑल इज इन आवर सेल्स इन ऑल। सब अगर आपके अंदर हैं, आपके अपने हैं, आप स्वयं सबके अंदर हो, तो आप किससे मारा पीटी करोगे? टू द कॉस्मिक वाइडनेस रियलाइंस अवर सोल्स। फिर हमारी जो अंतरात्मा है, जीवात्मा है, वो विश्व आत्मा से एक होने लगती है। ए किंडलिंग रैप्चर जॉइंस द सीयर एंड सीन। यहां तक कि अवस्थाएं होती हैं। अब ये कॉस्मिक वाइडनेस ये दृष्ट बदल, दृश्य बदल देती है। इसको हम ऐसे देखें कि आप छोटे बच्चे को माँ कहती है पढ़ पढ़ नहीं तो छड़ी लेके बैठी, मान लो अब नहीं बैठती हैं क्योंकि बच्चा कोर्ट केस कर सकता है, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलर, किसी ने खबर कर दी तो स्विट्जरलैंड में तो लोग कहते हैं पैराडाइज है, लेकिन वो बच्चे ने कंप्लेन कर दी या नेबर ने कंप्लेन कर दी तो बच्चे को अलग कर देते हैं वो माता पिता से। आई नो वन इंडियन पेरेंट, वो वापस आए, वो कहते हैं उन्होंने अलग ही ले लिया, मैं गुस्सा कर लिया था तो अलग कर दिया, नहीं आप नहीं रह सकता आपके साथ में। भाई ऐसी पैराडाइज भाई मुबारक हो। तो इस तरह के नियम है तो यहां, लेकिन माता पिता से अगर आप पूछें कि आप क्यों बच्चे को डांट रहे हैं, क्या कहते हैं वो, प्रेम करता हूं मैं, हाँ अच्छे से प्रेम करता हूं तो ये मुझे मत बतला। ठीक है ये तरीका गलत हो सकता है, लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते कि उनके अंदर प्रेम है। तो फिर क्या होता है कि हम चेंज हो जाती है हमारी दृष्टि, कॉस्मिक वाइडनेस वैसी ही है। भगवान किसी का वध कर रहे हैं, आप कहेंगे कि आपने इसको क्यों मार दिया, शिशुपाल पे आपने सीधा सुदर्शन चक्र 100 गालियां दी थी, गांधी जी तो 1000 गालियों पे भी कुछ कर देते। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कहते अरे मूर्ख मारा नहीं उद्धार किया, मारा तेरी भाषा है। कहें क्या मतलब, कहते मैंने उसको अपने अंदर बुला लिया। इससे और दुष्कर्म ना हो तो सारे दुष्कर्मों को एग्जॉस्ट करके अपने अंदर बुला लिया। तो वो एक अलग सेंस है, कॉस्मिक दृष्टि बिल्कुल अलग है। एक किंडलिंग रैप्चर जॉइंस द सियर एंड सीन, जिसको देखा उससे वो एक हो जाता है, सियर एंड सीन, द क्राफ्ट्समैन एंड द क्राफ्ट ग्रो इनली वन। अब एक उदाहरण दे रहे हैं कैसे, क्योंकि जब आप उस क्रिएटिव सत्य से मिल जाते हैं तो आपके अंदर उसके अंदर कौन है, एक ही है, तो आप क्या हुए, आप ब्रदर्स हो गए ना, फ्रेटर्निटी का ये बेसिस है, आधार है, जो आज तक लोग खोज नहीं पाए। तो फ्रेटर्निटी का आधार ही यही है कि भाई जब तेरा पिता और मेरा पिता एक है, लेकिन रिलीजन ने उसको भी बर्बाद कर दिया है, मेरे पिता का नाम अल्लाह है और तेरे पिता का नाम भगवान है, प्रॉब्लम हो गई इसमें। तो जब आप एक है तो आधार हो गया ना, तो इनली वन, क्राफ्ट्समैन और क्राफ्ट जो कर रहा है उसमें क्या है, दोनों में इसके अंदर जो प्रेम है और जो आनंद है वही उसके अंदर मूर्त हो रहा है, और क्या है, अमूर्त और मूर्त का मिलन है, क्राफ्ट्समैन और क्राफ्ट का, ग्रो इनली वन। अचीव परफेक्शन बाय द मैजिक थ्रॉब एंड पैशन ऑफ देयर क्लोज आइडेंटिटी। ये माइकल एंजेलो की कहानी है कि वो छेनी हथौड़ी लेके रात को काम करते थे मूर्ति बनाने के लिए, अमृत दा का प्रीवियस लाइफ है, और सारे लोग परेशान दुखी हो रहे हैं, पर कोई कुछ दिनों बाद उनको आदत हो गई छेनी हथौड़ी सुन के म्यूजिक लगता था। तो एक दिन बंद हो गई छेनी हथौड़ी, तो अब नींद नहीं आ रही लोगों को, ये क्या हो गया, तो जानना चाहते हैं। तो फिर वो सुबह सुबह सब परेशान है देखने को, तो देखा तो वहां एक बड़ी सुंदर सी मूर्ति खड़ी हुई है, काम खत्म हो गया था। तो उन्हें कहा ये तुम्हें कैसे पता चला कि इतनी सुंदर मूर्ति इस पत्थर के चट्टानों के अंदर है। तो माइकल एंजेलो कहते मैंने देखा था। कौन सी आंख से देखा था, अब देखिए वैसी चीज होती है, पूरी दृष्टि बदल जाती है, तो वो परफेक्शन की ओर आपको ले जाती है। भगवान भी ऐसे ही करते हैं, जैसे बच्चा रो रहा हो लेकिन माँ साबुन लगाती है, तो वैसे ही भगवान भी कभी कभी हम लोगों को जरा काली रूप में आते हैं, वो बहुत इंटेंस प्रेम होता है, वेरी इंटेंस लव, हर किसी पर नहीं माँ ये करती हैं। ऑल दैट वी स्लोली पीस फ्रॉम गैदर्ड पार्ट्स और बाई लॉन्ग लेबर स्टम्बलिंगली इवॉल्व इज देयर सेल्फ बॉर्न बाई इट्स इटर्नल राइट। वह हमारा ओरिजिनल प्लान है, और वो जब पता चल जाता है तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है। जैसे एक माता पिता बोलेंगे देख मेरा प्लान है तू बड़ा हो के हवाई जहाज उड़ा, देखते रियली हाँ, लेकिन उसके लिए ये जो तू हवाई जहाज लेके घूम रहा है ना ऊपर ऊपर वो जहाज बना के, इसको तू रख और तू पढ़ाई कर। वो कहेगा आप चाहते हो मैं हवाई जहाज उड़ाऊं, कहते हाँ लेकिन इस तरह से नहीं, अभी तुझे इससे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो उस तरह जब हम वो जान जाते हैं तो हमको जीवन में भगवान का हाथी दिखाई देता है हर चीज में। इन अस टू द इंट्यूटिव फायर कैन बर्न. तो हम कैसे जान सकते हैं इंट्यूशन के माध्यम से? रैशनल माइंड से ही हम जान नहीं सकते. रैशनल माइंड से हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जान नहीं सकते कि हमारे जीवन में क्यों ये चीजें हो रही हैं. तो इंट्यूशन हमें बता सकती है. एन एजेंट लाइट इट इज कॉइल्ड इन अवर फोल्डेड हार्ट्स. कहाँ मिलेगी इंट्यूशन? हृदय के अंदर है. कैसे? वो फोल्डेड है, यानी चिप होता है ना. अब सोचिए घर की, अभी आज के समय में सबसे वैल्यूबल चीज क्या है? कंप्यूटर के अंदर चिप. अब वो चिप ढूंढी जा रही है, कहाँ है वो छोटी सी चिप है, उसके अंदर पूरा हमारा मास्टर प्लान है जो हमको पता नहीं है, तो हमको समझ नहीं आ रहा है. तो वो चिप की तरह हमारे हृदय के अंदर है. ऑन द सेलेस्टियल लेवल्स इज इट्स होम. लेकिन चिप कहाँ से आई है? वहां से बन करके चिप डाली गई है हमारे अंदर चैत्य सत्ता के रूप में, जिसमें हमारा पूरा मास्टर प्लान बंद है. डिसेंडिंग इट कैन ब्रिंग दोज हेवेंस हियर. अगर वो प्रकाश जो यहाँ कैद है और हायर प्लेन्स पे व्याप्त है, वो अगर आए और इसको लिबरेट कर दे जो बंद है हृदय में, तो फिर हमारा जीवन भी बदलने लगता है. कैसा हो जाता है? स्वर्गीय हो जाता है. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है. तो अच्छा ऐसा है, भगवान ने मुझसे जो जो छीना सही किया. ये होता है, आप जीवन में देखिए जब कोई चीज़ छीन रही होती है ना, लोग बड़े दुखी होते हैं. 10 साल बाद ना कहते हैं सांस आई, भगवान ने जो किया बड़ा अच्छा किया. उस समय हमको समझ नहीं आ रहा था, आपको तब पता चलता है. तो वो चीज़ अगर डिसेंड करके ऑपरेटिंग हो जाएगी तो आपको तभी पता चल जाएगा कि वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं. But rarely burns the flame nor burns for long. The joy it calls from those diviner heights brings brief magnificent reminiscences. ये भी कह रहे हैं लेकिन ये बड़ा रेयर है. थोड़ी देर के लिए एक फ्लैश होता है लेकिन फिर वो बत्ती बुझ जाती है. इसीलिए साधना योग इसीलिए आवश्यक है. अगर वो परमानेंटली जलने लगे तो हमको चीजें अलग दृष्टि से दिखाई देने लगेंगी. एंड हाई स्प्लेंडेड ग्लिम्सेस ऑफ इंटरप्रेटिंग थॉट. इंटरप्रेटिंग थॉट क्या होता है? एकदम आपको उस चीज का मतलब बदल देता है. ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारे भागवत पुराण में भी, हम लोग पढ़ रहे हैं घटना कि जब उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो राजा बड़ा रो रहा है, दुखी हो रहा है, कहता है कि वरदान मिला था मुझे तो शिव जी से वरदान मिला था. ये तो यंग एज में, हालांकि शिवजी ने कहा था, लेकिन वो यंग एज में जब डेथ हो जाती है बहुत दुखी हो रहा है राजा चित्रकेतु. तो नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि के आशीर्वाद से मिला था. तो कहते हैं क्या करना है तुझे? कहते हैं बच्चे से बहुत पीड़ा में हूँ, ये क्या दिया भगवान ने, ऐसा क्यों दिया? देखो मेरी रानियों को कैसे विलाप कर रही, क्या करूँ मैं? उन्होंने मारा है वैसे मिल करके, मिली भगत करके. क्योंकि वो एक रानी जिससे बच्चा हुआ था उसको राजा ज़्यादा स्नेह करने लगा, अब सब विलाप कर रही हैं. तो नारद कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, ये सब तुम लोग जो कर रहे हो ना. कहते लेकिन हमें संतोष कैसे हो? तो कहते राजा चित्रकेतु को चलो मैं बात करवा देता हूँ उससे. तो वो आता है तो कहता है मेरा बेटा आ गया. कहते बेटा? किसका बेटा? कहते मैं तुम वही हो ना? कहते हाँ वो मेरा वो नाम रूप था, आपसे क्या लेना देना. पेरेंट्स आर शॉक्ड. वो जो बातें करते हैं उसके बाद उनको लगता है हम कितने मूर्ख हैं. वो अपनी आगे की यात्रा में जा रहा है. तो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. तो राजा चित्रकेतु फिर ये सब भूल करके वो स्वयं एक योगी बनता है और ये अचीव्स लिबरेशन. वो कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं. तो दृष्टि बदल जाती है सारी और चीजें अलग ढंग से समझ जाती है. लेकिन ये टच कभी कभी ही होती है हमारे जीवन में कृपा के रूप में. एंड हाई स्प्लेंडेड ग्लिम्सेज ऑफ इंटरप्रेटिंग थॉट. अब ये इंटरप्रेटिंग थॉट क्या है जो नारद मुनि उन्हें समझाते हैं. बट नॉट द अटर विजन एंड डिलाइट. विचार तो आ गया अच्छा ऐसा है, लेकिन आपको वो आनंद महसूस नहीं हुआ. उसके लिए साधना करनी पड़ती है. ए वेल इज केप्ट, समथिंग इज स्टिल हेल्ड बैक. क्यों वो छिपा के रखा है भगवान ने? ऐसा होना चाहिए विचारों को समझ आ गया तो सीधा आनंद भी आ जाए. क्यों? लेस्ट captives of the beauty and the joy our souls forget to the highest to aspire. इसके भी परे कुछ है, intuitive world के भी परे कुछ है. यही तो श्री अरविंद उस highest perfection की बात करते हैं, supramental. तो वो फिर आदमी इंट्यूशन में जब जीने लगता है, साइकिक बीइंग जब इमर्ज करता है, इट इज सो ब्यूटीफुल। सावित्री में इसका वर्णन है कि सावित्री कहती है मुझे कुछ भी करने की क्या जरूरत है। तो ध्यान भगवान की नहीं, काम है भैया, यहाँ काम के लिए आए हो। तो भगवान का अपना तरीका है दिखाने का। यहाँ पर ये मूवमेंट समाप्त होता है पेज 113 पर, और आगे इसी कैंटो में, इन दैट फेयर सटल रेल्म बिहाइंड अवर ओन द फॉर्म इज ऑल एंड फिजिकल गॉड्स आर किंग्स। अब श्री अरविंद हम लोगों को ये पूरा एक सटल मैटर का पूरा वर्णन करके वापस अब सूक्ष्म जगत पे ले आते हैं, जहां पे चीजें सब सुंदर रूप है, सुंदर आकृतियां हैं। द इंस्पायरिंग लाइट प्लेज इन फाइन बाउंड्रीज। अब क्यों ये कह रहे फाइन, हर जगह उनके देखो हिंट आते हैं कितने। एक कला का ये है, दो तरह की बाउंड्री होती है, एक होती है जो आप बड़ी कठोर होती हैं, एक होती है जो बड़ी सटल होती हैं। ये क्रिएटिव आर्ट में ये चीजें आती हैं। तो फाइन बाउंड्रीज में कोई चीज होती है, उसका जो जॉय है, जहां वो मर्ज कर रही है, उसके अंदर सजेशंस छिपे हुए हैं, उसकी बात हो रही है। ए फॉल्टलेस ब्यूटी कम्स बाई नेचर्स ग्रेस, उस जगत की बात हो रही है। देयर लिबर्टी इज परफेक्शंस गारंटी, यहां पे नहीं है, यहां आपने कह दिया भाई यू हैव लिबर्टी, अब देखिए क्या होने वाला है, क्या उसकी ओर भागेगा आदमी। जैसी उसको लिबर्टी मिलती है, फ्रीडम, वो क्या करता है, वो उसका मिसयूज करता है। वहां पे वो है ही नहीं, आपको जैसी लिबर्टी मिली आप सौंदर्य को प्रकट करोगे, ऑप्शन नहीं है कोई और। लगे बड़ा अच्छा जगत है, लेकिन वी शुड वेट। ए फैंटेसी ऑफ परफेक्ट लाइन एंड रूल, दे आर ऑल फील सेटिस्फाइड इन देमसेल्व्स एंड अ होल। वहां जितने भी नाम रूप हैं सब जॉय में हैं, सब सुंदर हैं, सुंदरम सुंदरम मधुरम मधुरम। लग रहा है ना कितना अच्छा है ये संसार। वी शुड वेट, श्री अरविंद कुछ बताने वाले हैं। ए रिच कंप्लीटनेस इज बाय लिमिट मेड, लिमिट है वहां पे। वो लिमिट क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो अब ये रूप है, ये नहीं कि ये सब मिक्स हो गया, मर्ज हो गया, तो आपको एक लिमिट तो बनानी है। तो लिमिट, लेकिन वो परफेक्शन की लिमिट है। Marvel in an utter littleness abounds, an intricate rapture riots in a small space. आप देखिए कभी कभी ये भौतिक जगत में भी इसका अनुभव हो सकता है। सीपी को उठा करके देखिए, इतनी सुंदर, मतलब आपको आश्चर्य होगा। और कभी कभी अगर आप एक मिट्टी के कण को ना अगर माइक्रोस्कोप में देखें, आई डोंट नो किसी को इसका एक्सपीरियंस है कि नहीं, यू विल मार्वेल एट इट। इसका एक वो आया था क्रिस्टलोग्राफिक इमेजेस, पानी के मॉलिक्यूल्स की, और कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं ध्वनियों के प्रति। इट्स अमेजिंग कि वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके अंदर वो मार्वल, छोटी सी हर जगह भगवान ने ब्यूटी भरी हुई है फॉर्म की। सूक्ष्म जगत में वो चीज दिखती है। ईच रिदम इज किन टू इट्स एनवायरमेंट, ईच लाइन इज परफेक्ट एंड इनेविटेबल। आपकी जो वॉक है, रिदम, यहाँ केवल बात की नहीं हो रही, आपके जो जेस्चर है, पूरे मुद्राएं हैं, सब कुछ आसपास उससे समन्वय में है। ये नृत्य में आते हैं ना, कथकली में आप देखिए रिप्रोड्यूस करते हैं, वो राम और रावण का युद्ध है, देखने में बड़ा मजा आता है। दोनों वो डांस करता हुआ, या महिषासुर मर्दिनी, या महिषासुर, देखा होगा ना, वो डांस कर रहे हैं, वो इधर छलांग लगा के जा रहे हैं, वो इधर छलांग लगा के, अंत में गिर रहा है, उठ रहा है, अंत में वो जब मृत्यु भी होती है तो लगता है अरे वाह अद्भुत। तो परफेक्ट है रिद्म सब कुछ। आप कहेंगे क्या हो रहा है, कहते हैं महिषासुर का वध हो रहा है। इसी को अगर आप सिनेमा में दिखाएंगे, इतनी चीख पुकार, रुदन और पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो वहां पर सब कुछ एक सौंदर्य की लिमिट में बोध है। Each object faultlessly built for charm and use. हर चीज जहां होनी चाहिए वहां है, और बिल्कुल अपेक्षित ढंग से है, faultless। ये कला है जो मनुष्य को सीखनी चाहिए। कहते हैं ना, एक चीज एक्स्ट्रा ना हो, और जो है जहां है वहां हो। आप सोचिए जीवन कितना सुंदर बन सकता है इवन अभी, ये हम लोग नहीं जानते। ढूंढनी पड़ती है हर एक चीज, पैंट के साथ शर्ट मिली हुई है, जूते कहीं और हैं, ढूंढ रहे हैं, ये रोज की चीज की बात है और लोग बड़ा गर्व करते थे इसमें। पुराने समय पिक्चरों में वो हस्बैंड बाहर जा रहा है, कहता है टाई मेरी कहाँ है, देखो ये नहीं पता है, रोज तो टाई लगा के जाता है, वो लेडी बेचारी ढूंढ के ला रही है, कह रही ये लो टाई तुम्हारी। पर एक ब्यूटी का ये भी कंसेप्ट है, चीजें जहां होनी चाहिए वहां है, सूक्ष्म जगत में जहां होनी चाहिए वहां है, जब जिस चीज की आवश्यकता है वो वहां आपको मिलेगी। माँ के बहुत उदाहरण है, उन्होंने इसको प्रैक्टिकली भी बताया है। ऑल इज एनेमर्ड ऑफ इट्स ओन डिलाइट। अब थोड़ी समस्या ये कि सब अपने आप में खुश हैं तो अच्छी बात है ना, तो इंटैक्ट इट लिव्स ऑफ इट्स परफेक्शन श्योर इन ए हेवन प्लीज्ड सेल्फ ग्लैड इम्यूनिटी। स्वर्ग की ये समस्या है, ये स्वर्ग में क्या समस्या, अपनी परफेक्शन के वो श्योर है, सब कुछ जैसे चाहिए। इंद्र भगवान को तो कहते कि वो ताली भी नहीं बजानी पड़ती। मन में भाव आया, सोमरस आ गया, नित्य हो नित्य शुरू हो गया म्यूजिक, कोई टेप रिकॉर्डर के पास जाना नहीं, कोई रिमोट नहीं, कुछ नहीं, वो मन से ही वो चीजें प्रकट हो रही हैं। ऐसा मेटेरियल पैराडाइज लोग बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। कंटेंट टू बी इट हैज नीड ऑफ नथिंग मोर। अच्छी अवस्था है कि बुरी अवस्था है, एक लेवल पर लगता है वाह ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं सुपरामेंटल वर्ल्ड इज लाइक दैट, वी शुड वेट एंड हियर। हियर वॉज नॉट फ्यूटाइल एफर्ट्स ब्रोकन हार्ट। वहां आप उससे प्रेम करते थे जो बना है, अगर आप देखिए यही तो कहानी ना, वहां पर जो प्रेम की कहानियां वो अलग होती हैं। धरती से अर्जुन चले गए थे तो कौन प्रेम कर बैठी थी उनसे, चित्रांगदा ही प्रेम कर बैठी थी। अर्जुन तो पूरे उनको दुनिया भर की दुनियादारी कहते नहीं नहीं मैं तुम्हारा गुरु हैं, मेरे मैंने सीखा है इन गंधर्वराज से, तुम भी उनकी शिष्या हो तो हम दोनों भाई बहन हैं, शादी नहीं कर सकते। ये सब धरती पर है, सेलेस्टियल बींग्स के लिए ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, लागू नहीं होते। तो वो श्राप दे देती है, कहती तुम जाओ एक समय तुमको जो मुझसे सीखा है ना जरूरत पड़ेगी तुम नपुंसक हो जाओ। तो फिर इंद्र के पास जाते हैं कि ये आपके देखिए इसने क्या कर दिया, कहते हैं वो तुम्हारे काम ही आएगा, एक साल के लिए तुम नपुंसक बनोगे। तब वो ब्रह्म अल्लाह का रूप धारण करते हैं जो राजा विराट के घर में। तो ये सब चीजें यहाँ होती हैं, और जब मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं तो वहां भी कभी कभी हो जाती है, परंतु वहां ये है नहीं। वहां एकाध ऐसी बस कहानियां मिलती हैं, जैसे केसरी को वहां से वो निष्कासित की जाती हैं, क्या नाम था उनका, वो भी एक अप्सरा थी। वहां क्या था, एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑर्डियल एंड द टेस्ट, एम्प्टी ऑफ अपोजिशन एंड ऑफ पेन। वहां कोई टेस्ट नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, दुख की छाया भी नहीं। कहते थे हमारे, मतलब ये जनश्रुति है कि देवताओं को कैसे जाना जाता है, कहते हैं तीन लक्षण होते हैं उनके। एक लक्षण ये कि उनके पांव जमीन से थोड़े उठे होते हैं, दूसरा ये कि उनकी आंखें झपकती नहीं है, और तीसरा ये कि आंख में आंसू नहीं आते देवत्व का, ये क्योंकि उनको पीड़ा पता ही नहीं है। उनको मृत्यु जीवन आप बोलेंगे कि अरे वो मर गया, वो कहेंगे फिर आ जाएगा, उसमें क्या है, खिलौना टूटा आ जाएगा, एंड ऑफ द स्टोरी। उनके लिए वो पीड़ा का एहसास नहीं है, वो रुदन का भाव नहीं है। इट वॉज ए वर्ल्ड दैट कुड नॉट फियर नॉर ग्रीव। कैलाश पर्वत पे जाके आप किसी को बोलोगे अरे वो सुना है वहां कोरोना हो रहा है, वहां अमेरिका ईरान में युद्ध छिड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों आके हमारे पास आएंगे, हंसेंगे लोग बैठे ना हमारे भोलेनाथ। कोई इशू नहीं है वहां पे। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इट हैड नो ग्रेस ऑफ एरर और डिफीट। देखिए कहते हैं जो कभी गिरा ना हो और जो कभी फेल नहीं हुआ हो, कभी उसको लीडर के रूप में मत मानना, वो आपको नहीं लीड कर सकता है। कितनी, क्योंकि वो जैसी आपके अंदर कोई फेल्यूर या चैलेंज, वो घबरा जाएगा या इम्पेशेंट हो जाएगा या आपको हटा देगा, तो उसके बैनर के अंडर जाना चाहिए। इसलिए आप देखिए पांडवों की प्रॉब्लम इशू क्या है, अद्भुत बात, वो बेचारे बार बार मार खा चुके हैं और दुर्योधन कभी इस चीज को नहीं समझ पाया। उसने अपना नॉर्मल असेसमेंट कर लिया कि देखो हमारी सेना बेटर है, हम तो मार डालेंगे इनको। पर पांडवों को परफेक्शन की ओर ले गए थे श्री कृष्ण, कैसे, डिफीट, फेल्योर, इस सब के मार्ग से। इट हैड नो रूम फॉर फॉल्ट, नो पावर टू फेल। ये क्या बात कह गए श्री अरविंद, फॉल्ट का संभावना नहीं लेकिन पावर टू फेल, ये भी एक शक्ति होती है। शेरविंद एक जगह कहते हैं, किसी ने उनसे कहा भगवान बहुत महान है, कहते हैं हाँ इंडीड बहुत महान है, यहां तक कि वो फेल भी करना स्वीकार कर सकते हैं यदि उनके प्रयोजन के लिए ये आवश्यक हो। कहानी याद आ गई, आई कोई कहानी याद? अरे श्री कृष्ण जी का प्रचलित नाम है रणछोड़। बड़ा खुश हुआ काल यवन, देखा विवश कर दिया, भगा दिया हमने। उनको पता नहीं है वो इसको कहां भगा रहे हैं। बिना लड़े हुए उसको ले गए केव में जहां मुचकुंद ऋषि सो रहे हैं और वो वहां पे उठाता है, वो देखते हैं तो मर जाता है क्योंकि उनको ये वरदान मिला है मुचकुंद ऋषि को कि जो डिस्टर्ब करेगा तुम्हें इंस्टेंटली मर जाएगा। हाँ वो उड़ा देते हैं, तो वो कृष्ण जी का ये अंदाज है। लेकिन साथ में क्या करते हैं, इसके बाद द्वारका का जन्म होता है। तो ये जो एरर डिफीट, अगर उस समय का केवल उसको फ्रीज कर दो, देखो कृष्ण जी हारे थे ना, भगवान कैसे हैं? आप कहेंगे जो हार से रास्ता निकाल ले वही तो भगवान है। कभी हारा तो रावण भी नहीं था एक्सेप्ट लास्ट मिनट, रावण कभी नहीं हारा था एक्सेप्ट द लास्ट मोमेंट। दुर्योधन भी नहीं हारा था एक्सेप्ट द लास्ट मोमेंट, वो छोटी मोटी जो बीच की कहानियां उनको छोड़ दे। कर्ण भी नहीं हारा था, लेकिन ये सारे जो पांडव थे जुए में हारे बेचारे। हार से वो परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हार क्या सिखाती है हमको, ये हमारे फिक्स्ड आइडियाज फिक्स्ड उसको तोड़ देती है और एक तरह से हमारे लिए आगे का मार्ग खोलती, नहीं तो हम लोग उसमें सीमित परफेक्शन में सुखी हो जाते हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड अब रियलाइज कर रहा है, वहां पर जो ये एनार्किक थॉट आ रहा है, जो ब्रेकअप हो रहा है, वास्तव में खुद को ही तोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास समृद्धि आ गई। पहले तो बड़े खुश हो रहे थे, हम बड़े समृद्ध हैं समृद्ध हैं समृद्ध हैं, लेकिन अब वो समृद्धि के अंदर ट्रैप हो गए हैं। और वो ट्रैप क्या है कि अब उनको बिना उन चीजों के उनका वश नहीं चलेगा। अब पुराने समय के जो हम लोग भारतीय हैं, आज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मान लीजिए लाइट चली गई हम एंजॉय कर लेते हैं ना। हम एंजॉय कर लेते हैं, इसको एक्चुअल भाषा में कहते हैं रेजिलियंस फैक्टर। हम देख चुके हैं भैया, वो जमाना भी देखा है, हमको इश्यू नहीं है। हम तो रोटी दाल से गुजारा कर लेंगे, उनको प्रॉब्लम है, दे नॉट यूज टू दिस, क्योंकि उन्होंने लिमिटेड परफेक्शन का एक जगत क्रिएट कर दिया जहां हर चीज आपको एसी भी लगाना है तो रिमोट, यहां से आपका रिमोट, वो हीटर ऑन, सब कुछ रिमोट से। लेकिन अब रिमोट खो गया तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करूं क्या। लेकिन ये जो एस्पेक्ट है ना, जो फेल्योर से जो सीखता है, एक जगह शेरविंद कहते हैं ओ मिस फॉर्चून ब्लेसेड आर दाओ, दाओ हैज शोन मी द फेस ऑफ द बिलवेड। ये उस जगत में नहीं है, फेल्योर नहीं है, इसलिए विकास की संभावना नहीं है। वो समझ रहे हैं यही सब कुछ है। भारत तो भगवान, रोड पे आप जाएंगे तो भगवान याद आएगा, आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे कहीं जाएंगे आपको भगवान याद आएगा, आपका चारा नहीं चलेगा। धड़म धड़म रोड करेगी तो आप क्या बोलोगे, मां मां मां, हे कृष्ण हे गोविंद हरे मुरारे। ये नहीं कि ऐसा रहना चाहिए, पर यह कि जो एक लिमिटेड परफेक्शन का जो कंसेप्ट है, ये नहीं कि ये परफेक्ट हो जाएगा तो भी आपके जीवन में अनेकों चीजें आएंगी। आप देखिए डाइवोर्स रेट ये सब क्यों इतने अधिक हैं बाहर में, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का कल्चर आ गया है। हम लोग फेल होना जानते हैं, गिर के उठना जानते हैं, कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करी फिर भी हम उसको वर्क करवा लेना जानते हैं, एक बहुत बड़ी चीज है जो आप फेल्योर और समस्या से, जिसको हम लोग एक शब्द भी है हमारे हिंदी में जुगाड़, अब वैसे वो बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन जुगाड़ की भी एक एक्सपर्टाइज होती है, यू टेक आउट, यू ठीक है, और उससे आपका एक डायमेंशन खुलता है, एक नई चीज कोई आपको समझ में आती है। बड़े अद्भुत उदाहरण है जुगाड़ के, एक है जब माता जी ने ओरिजिनल ओके जुगाड़ की स्टोरी, अब एक ही जूते, उनको जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, ये 15 साल की बात है, अब एक 15 साल की लड़की है, स्कूल जा रही है, 15 साल से भी छोटी है, अब जूते का तो आपके भी कोई तो चप्पल हो कुछ हो, तो उन्होंने क्या किया, वो डिज़ायर को नहीं आने दिया, वो क्या करती थी जूते को, उनको पेंटिंग आती थी, वो पेंट था उनके घर में, पेंट से वो उसको नए नए ढंग से पेंट करती थी, ऐसा लगता था हर हफ्ते नए जूते आ रहे हैं। अभी देखिए क्रिएटिविटी आई कि नहीं आई। तो ये जो हमारे जीवन में ये जो हम चाहते हैं लिमिटेड परफेक्शन, इट इज नॉट ए वेरी वेरी गुड थिंग, क्योंकि वो आपके विकास, आगे के विकास को रोक देता है, आपको वहां कैद कर देता है, वो भी एक प्रकार की जेल है, उसका यहां पर वर्णन है। आउट ऑफ सम पैक्ड सेल्फ ब्लिस इट ड्रू एट वंस इट्स फॉर्म डिस्कवरीज ऑफ द म्यूट आइडिया, वो सूक्ष्म जगत क्या कर रहा था, कहीं पर ब्लिस और आइडिया को कहीं ना कहीं से टैप करके वहां पे रूप बना रहा था। एंड द मिरेकल ऑफ इट्स रिदमिक थॉट्स एंड एक्ट्स इट्स क्लियर टेक्निक ऑफ फर्म एंड राउंडेड लाइफ। जीवन में यदि सब अच्छा हो रहा है तो भगवान शायद भूल गए हैं। फर्म एंड राउंडेड लाइफ, राउंडेड होता है परफेक्शन का, तो इसकी तो बहुत सारे उदाहरण हैं। किसी ने एक बार पूछा भी था, एक सिंगापुर में टॉक दे रहा था, मैं कहा, किसी ने कहा मेरे जीवन में तो सब अच्छा है, पैसे हैं, ये वो हैं, 70 साल की उम्र थी, तो आश्रम के कोई व्यक्ति थे, आश्रम के नहीं थे, उड़ीसा के एक स्पीकर थे, मैं भी था वहाँ पे, इन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा हो सकता है भगवान तो मैं भूल गया हूँ इसके लिए तैयार ही नहीं था वो शॉक्ड हो गया कहता है मेरे से बाद में कहते कि ये उन्होंने क्या कहा, मैंने कहा सही कि कहा, मैं अनुमोदन करता हूं, मैंने कहा आपकी बात नहीं है, थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया। पर ये सच है कि जीवन में प्रगति कब आती है, जब आप थोड़े टप टप गिरते हैं तब जिसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है वो तो बड़ा कुछ है। और यही चीज आप देखिए, अमेरिका जाइए, बाकी जगह भी जाइए, सब कुछ है, भगवान की वो भाव नहीं है, फैक्ट बता रहा, मतलब बाई एक्सपीरियंस आई एम सीइंग, नहीं आता है उनके लिए भगवान, मतलब वो लोकल टेम्पल होगा, वहां आप चले जाएंगे, वहां पर आप मनाइए, बट यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो भारत में आपको एक साधारण जो सब्जी बेच रही है ना, उसके पास मिलेगा, हृदय के अंदर कोई चीज खुली हुई है, बिकॉज वी हैव लर्नड इट, वो सीख गई है देने का जॉय, और उसकी स्माइल में आपको बड़ा मजा आएगा। वो ये नहीं कि एक बड़ी कोई मॉल के अंदर एक नारियल बेचने की दुकान जहाँ फिक्स रेट लगे हुए हैं, जहाँ आपने दिया और इम्पर्सनली कोई खड़ा हुआ है, वहाँ पर जाके आपने कार्ड कैश कराया, वहाँ पर भी वो इम्पर्स, थैंक यू सर बोलते बड़े मने थैंक यू सर हम लोग ऐसे ग्रो करते, हाँ दीदी आज तो आई नहीं, वो बगल वाली क्यों नहीं आई सब्जी लेने वाली, देखिए एक हमारे यहाँ विश्व बंधुत्व का भाव कैसे डेवलप होता है, एक्सपीरियंस किया होगा ना आप, पूछते हैं वो सब्जी जो रेगुलर जाते हैं वो क्यों नहीं आई, तो कहते नहीं उसकी तबीयत ठीक, ओ क्या हो गया, अब ये चीज आप क्यों कैन नॉट एक्सपीरियंस। हम लोग इस चीज को अनफॉर्चुनेटली, जापान ने तो खो दिया इसको, क्योंकि जापान पूरी तरह वो वेस्टर्न मॉडल की तरफ चला गया। तो ये जो चीज होती है ना जो हमको एक विशालता की ओर ले जाती है, आपस में सुख दुख होता है, आप 901 को नहीं बुलाते हो, आप पड़ोसी को बुलाते हो, पड़ोसी खुद आता है, जब किसी की मृत्यु होती है तो घर में खाना आप नहीं बना रहे हो तो लोग आपको आपको भोजन कर बना के दे रहे हैं, सांझा चूल्हा, ये सब चीज़ें थी, बर्गर संस्कृति नहीं थी कि अच्छा हम नहीं बनाएंगे तो हमने कॉल कर दिया हो कि मैकडोनल्ड्स हमको भेज देना, ठीक है वो भेज देगा आपको, पर आप क्या मिस कर रहे हो, आप प्रेम और जॉय को मिस कर रहे हो। तो ये जो चीज़ है यहाँ इसका वर्णन है, इट्स ग्रेशियस पीपल ऑफ इनएनिमेट शेप्स एंड ग्लोरी ऑफ ब्रीदिंग बॉडीज लाइक अवर ओन। अब यहाँ उसका बता रहे हैं कि वहाँ कैसा है बॉडीज, वहाँ श्वास भी है, अमेज्ड His senses ravished with delight. देखने में बड़ा आनंद आया. He moved in a divine yet kindred world. लग रहा था कि हम पहुंच गए दिव्य लोक. बहुत से लोग हैं जो यहां पहुंच के लगता उनको कि हमने भगवान का लोक देख लिया. अब देखिए, आप देखेंगे वहां कोई रो नहीं रहा, दुखी नहीं है, एक आपको परफेक्शन है हर चीज. कई लोग बोलते थे ना अमेरिका ही स्वर्ग है. अब वो तो अच्छा है कि धरती पर है, तो भगवान ने बता दिया कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है, एक बंदा चाहिए उसको बर्बाद करने के लिए. लेकिन एक समय लोग ये सोचते थे, यूरोप के बारे में ऐसे सोचते थे. अब उनको पता चल रहा है ये भी स्वर्ग नहीं है. तो ये जो हमारी उसकी, लेकिन वहां पे अशुपति देख रहे हैं, एडमायरिंग मार्वेलस फॉर्म सो नियर टू अवर्स येट परफेक्ट लाइक द प्लेथिंग्स ऑफ ए गॉड. मतलब ऐसा लग रहा था कि ये तो पहुंच गया मैं, अद्भुत. ये आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जस्ट दो लाइन लास्ट की हम पढ़ लेंगे आज, क्योंकि वो कंटेक्स्ट चल रहा है. ही लेफ्ट दैट फाइन मेटीरियल पैराडाइज, हिज डेस्टिनी ले बियॉन्ड इन लार्जर स्पेस. उन्होंने, अशुपति ने उस जगत को त्याग दिया. क्यों? यदि आपको आगे जाना है वहां आप कैद होके रह जाएंगे. तो वे भाई हैं, बहुत से मेरे बंधु हैं जिनके जीवन में ये डिलेमा आया या भगवान की कृपा हुई, बाहर गए, एंजॉय कर रहे थे, कुछ ने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि नहीं प्रगति अगर हमको करनी है तो भारत ही आना है, कोई चीज मिसिंग है वहां पे. और अब बहुत अच्छा हो रहा है. बहुत अच्छा क्या हो रहा है? अब वहां से वही लोग खदेड़ रहे हैं. अभी बहुत से भारतीयों को ये चीज समझ नहीं आ रही है, अरे हम तो इतने क्वालिफाइड हैं, हमको खदेड़ा क्यों जा रहा है? भैया कृपा हो रही है तुम्हारे ऊपर, इट्स ए ग्रेस. आने वाली तुम्हारी संतानों के लिए भी कृपा हो रही है. When you come here, you have a chance of growing in total perfection. Material paradise नहीं. इसका perfect example था जिससे मैं रुकूंगा. एक बार सिंगापुर की बात है, जब पहली बार मैं वहां से, लोगों ने बड़ा बताया था ये देखना, ये ट्रेन होगी, ये सब सब मतलब everything was marvelous. तो मैंने वहां पे, ऐसा लग रहा है कि क्या है यहाँ, सब कुछ है, कोई चीज बड़ी क्रूशल मिसिंग है. और अमेरिका से आ रहा था, तो आप सोचिए ये, एंड आई कुड सेंस कि यहाँ पे सोल तत्व है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है, महसूस नहीं हो रहा है. तो मैंने फिर कहा, ये मुझे क्या, बहुत पहले का अनुभव है, शुरू शुरू की बात, 2000 की बात है. तो मैंने सावित्री खोली, तो सावित्री में आया था कि मेटीरियल पैराडाइज, यहां रह गए तो डब्बे में बंद हो गए. सब कुछ मिलता है, बस भगवान नहीं मिलता है. उसको खोजने की आपके अंदर अभिप्सा नहीं होगी. ये नहीं कि नहीं मिलते, भगवान सब जगह हैं, आपके अंदर उसको खोजने का ललक ही नहीं उठेगी. और अगर एस्पिरेशन उठी तो वो कोई भी चीज जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से सपोर्ट नहीं करेगी उसको, क्योंकि वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पूरी की पूरी तरह वो जड़ प्रकृति के अंदर उसको परफेक्शन बनाने पर लगी हुई है. तो ये है, हम लोग आगे पढ़ेंगे अगली बार. जय मां.